मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जोशी मठ में जो प्राकृतिक संकट की स्थिति अभी दिखाई दे रही है उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आप सबको एक सूचना देना चाहूंगा और इस सूचना का संबंध उस विषय से है जिसके बारे में मैं अभी लंबे समय से आप सबसे बातें कर रहा था। वो विषय है पावर ऑफ एलिमिनेशन। हम लोगों ने काफी इसके बारे में बातें की हैं। फिलहाल आपने देखा होगा कि पावर ऑफ एलिमिनेशन पर हम लोग बात करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हम लोगों के सामने आ जाती हैं और ऐसे में उसमें बाधा पड़ जाती है। इसी संदर्भ में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं एक सूचना के रूप में, और वो ये कि पावर ऑफ एलिमिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, आप कह लीजिए, वो बाकायदे यूट्यूब पर डाल दिया गया है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ने उसे देखा भी हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये क्यों जरूरी है, साथ ही साथ आप अपने अंदर पावर ऑफ एलिमिनेशन की दक्षता का विकास कैसे करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने उसमें कवर किया है। हालांकि आप ये सब बातें बकायदे डेली ऑडियो लेक्चर में सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पर उसे जरूर सुन लें क्योंकि वहां सारी चीजें एक साथ आपको सुनने को मिलेंगी, है ना। तो सतह सतह सतह, परत दर परत आपके दिमाग में वो चीजें इकट्ठी बैठती चली जाएंगी, तो वहां आप इसे फोकस्ड तरीके से सुन सकेंगे। यहां चीजें बिखरे बिखरे रूप में आपके सामने आई हैं और देखिए जो डेली ऑडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है उसको देखते हुए ये मजबूरी भी है। हाँ, अब जो मैं आपसे बातें कर रहा था कि इसके आधार क्या हो पावर ऑफ एलिमिनेशन के, तो एक आधार की मैंने चर्चा की है, उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक छोटी सी सूचना थी, लेकिन इसके साथ मैं एक और भी अनुरोध करना चाहूंगा और वो ये कि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पावर ऑफ एलिमिनेशन पर जो आपने YouTube पर लेक्चर सुना है वो उपयोगी है, तो मैं चाहूंगा कि आपके अपने साथी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज उन्हें भी इसकी सूचना दें, उन्हें भी आप ये YouTube का लेक्चर शेयर करें। ऐसा मैं जानबूझकर कर रहा हूं। मैं जानबूझकर के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो बाजार है वो बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि इस खतरनाक दौर में सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है उनके लिए जो सच में इस दौर के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। खतरनाक चुनौती इस मायने में कि कैसे उन तक सही चीजें पहुंचाई जाएं और सही चीजों के प्रति उनके मन में विश्वास पैदा किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मुझे लगता है कि एकेडमी फॉर एक्सीलेंस जो इन चुनौतियों का सामना कर रही है, पूरी दृढ़ता के साथ कर रही है, उसमें आपका सहयोग मिलेगा। उसी सहयोग के अंतर्गत मैंने आपसे ये अनुरोध किया है कि प्लीज आप अगर इसे पसंद कर पाते हैं अपने लिए तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, राइट। दोस्तों आइए अब जो कुछ दूसरी खबरें हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। संवेद शिखर के बारे में जो कुछ समय से आंदोलन चल रहा था, अखबारों में लगातार आप लोग पढ़ रहे थे, वो समाप्त हो गया है। संवेद जो शिखर है ये झारखंड में स्थित है, जैनियों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, इसे सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। इसके विरोध में भारत का पूरा जैन समुदाय खड़ा हो गया था, आंदोलन कर रहा था, और उनकी मांग थी कि इसे पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? सीधी सी बात है कि वो अपनी बात रख रहे थे कि जब कोई भी स्थान पर्यटन स्थल घोषित हो जाता है तो वहां की पवित्रता को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ये उनकी मांग थी। चूंकि आंदोलन लंबा चला तो केंद्र सरकार ने भी अपना वह फैसला वापस ले लिया है जिसके तहत इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। यहां अब एक सवाल पैदा होता है, इस पर आप लोगों को विचार करना है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे और भी बहुत सारे इस तरह के तीर्थ स्थान हैं, मैं पर्टिकुलर अब इस पर नहीं आ रहा हूं, आप इससे सीधे जोड़ करके न देखें। बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल हैं जो बहुत पवित्र हैं, तीर्थ स्थल पवित्र होते ही हैं, जो भी देवी देवताओं के स्थल हैं पवित्र ही होते हैं और वो पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं, लोग वहां जाते हैं। हालांकि ठीक है उसे पर्यटन स्थल न कर करके कह के तीर्थ स्थल कहना चाहिए, लेकिन वहां काफी लोग जाते हैं और काफी श्रद्धा के साथ जाते हैं, कुछ लोग देखने भी जाते होंगे, अलग अलग तरह की बातें होती हैं और वहां बकायदे जो भी पर्यटन से संबंधित बातें होती हैं, जो व्यवसाय होते हैं वो चल रहे होते हैं। अगर ये बात और आगे दूसरे पर्यटन तीर्थ स्थलों के बारे में मांग की जाने लगी, आगे बढ़ गई, तब फिर क्या किया जा सकेगा? इस पर आप लोग बस थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को विचार करने की आदत पड़े, बस उसके तहत मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी। घटना तो हालांकि नवंबर में हुई थी, लेकिन अब ये जोर पकड़ रही है। और वो ये है कि एयर इंडिया के विमान में एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद फिर इसी तरह की एक और घटना हो गई, एयर इंडिया के विमान में दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार पर यह बात है, अखबारों में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब इस पर एडिटोरियल कमेंट भी आ रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि दुर्व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारतीय हैं। ये आपके जो फोर्थ पेपर में जो एथिक्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉरलिटी के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहेवियर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि उससे जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट मामला है। अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस घटना की चर्चा जरूर करें, क्योंकि अब यह जो घटना है यह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गई है। और कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की छवि धूमिल होती ही है कि इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे किया जा सकता है। मैं दुर्व्यवहार के बारे में आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं, तो इस पर भी आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि क्या कारण है कि हम सब इस तरह का दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। बकायदे जब हम प्लेन में बैठते हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम शिव की जो सेंस होता है उसके साथ वहां बैठेंगे, इसके बाद भी हम ऐसा कर बैठते हैं। इस पर मुझे लगता है कि आप सबको विचार करना चाहिए, थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा सा कोचिए, है ना, वो जो सुस्त बैठा हुआ है उसे थोड़ा उठाने की कोशिश कीजिए। बस इसके बारे में भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, खासकर ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी रैंकिंग 500 के अंतर्गत आती है, वे भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे हम सीधे सीधे न केवल अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक व्यवस्था से ही जुड़ पाएंगे। और वैसे भी जो शिक्षा नीति हमारी 2020 की आई है उसके तहत हम वैश्विक शिक्षा के का जो सिस्टम है उससे जुड़ चुके हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो वैश्विक स्तर की जो शिक्षा प्रणालियां हैं वो भारत में हम हासिल कर सकेंगे। इसके लिए डिटेल्स में काफी कुछ बातें दी हुई हैं कि वो बकायदे परिसर खोल सकेंगे, लेकिन परिसर के अंतर्गत ही वे ऑफलाइन क्लासेस लगा सकेंगे, ऑनलाइन क्लासेस की इन्हें अनुमति नहीं होगी। ये अपने फीस का निर्धारण कर सकेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकेंगे, यूजीसी का स्तर से कोई उन पर बहुत नियंत्रण नहीं होगा कि नहीं यहां आपको बकायदे आरक्षण की नीति भी लागू करनी पड़ेगी, आपका जो पाठ्यक्रम होगा वो इसी तरह का होगा, आपको ये रूल्स रेगुलेशन ही मानने पड़ेंगे, फीस आपको इतनी ही रखनी पड़ेगी। इन सारे प्रतिबंधों से ये कैंपस मुक्त होंगे। ऐसा शायद इसलिए किया गया है क्योंकि जब सरकार प्रतिबंध लगाना शुरू करती है तो कम से कम ये जो विदेशी संस्थान है ये तो भारत में नहीं आएंगे, क्योंकि भारत में आप देखते हैं कि किस तरह से चीजों को रेगुलेट किया जाता है, हायर जो एजुकेशन है और उसको लेकर के लगातार आपको पढ़ने को भी मिलता होगा कि भाई इनको ऑटोनोमी दीजिए, इनको अपनी स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन कह लीजिए कि कुछ व्यवस्थाएं हिंदुस्तान की, हमारे देश की ऐसी हैं कि जहां आप पूरी तरह से जब स्वतंत्रता दे देते हैं तो उसका भी दुरुपयोग होने लगता है। मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिल जाती हैं। तो अब क्या किया जाए, लेकिन इनको छूट दी गई है। हाँ, हमारे जो दूसरे रूल्स रेगुलेशन हैं जैसे कि फेमा कानून है वो बकायदे लागू होगा, और यदि वो कुछ नियम नहीं मानते हैं तो भारतीय कानून के तहत उनके ऊपर कार्यवाही होगी, यूजीसी समय समय पर जाकर के इनका निरीक्षण कर सकेगा। ये सारी बातें हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र ही होंगे। और जो खासकर जो शैक्षणिक गुणवत्ता के जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, वो भी इन्हें पूरा करने पड़ेंगे। इन सब के बारे में कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फीस इतनी ही लेनी होगी, आरक्षण, इन सब के बारे में उसे पूरी छूट दे दी गई। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। दोस्तों, अब मुख्य विषय के बारे में बस थोड़ी सी बातें मैं बताने जा रहा हूं। जोशी मठ नाम आपने सुना होगा, आदि शंकराचार्य ने जो चार मठों की स्थापना की थी उसमें से एक है जोशी मठ। वहां के जो घर हैं उन घरों में दरारें पड़ गई हैं और उन दरारों से पानी भी रिस रहा है। इसे लेकर के सच पूछे तो केवल भूगर्भिक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान चिंतित हो गया है। यह हिमालय का क्षेत्र है, आप जानते हैं कि जो हिमालय है वो किस तरीके से बिल्कुल कोमल चट्टानों पर बना हुआ है, तो वहां इस तरह से भूकंप वगैरह जैसी घटनाएं होती रहती हैं, भूस्खलन की भी घटनाएं होती रहती हैं, तो जो नीचे का जो हिस्सा है वो लगातार कमजोर होता रहता है। और ये जो जोशी मठ है ये स्पेशली मोरेन पर बसा हुआ है। मोरेन, मोरेन क्या होता है आप जानते हैं? मुझे लगता है कि जान लेना चाहिए, हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए। जैसे ऊपर से तो आपको दिख रहा है कि जमीन है, लेकिन उस जमीन के नीचे ग्लेशियर है, लेकिन उसके ऊपर लाखों टन पता नहीं कितने सालों से मिट्टी इकट्ठी होती चली गई है। लेकिन अब जो नीचे का ग्लेशियर है वो ग्लेशियर तो धीरे 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 पिघलेगा। और आप कल्पना कीजिए कि बर्फ के ऊपर कोई मिट्टी जमी हुई और वो बर्फ पिघल करके पानी बन जाए, तो उस मिट्टी का क्या होगा? वो मिट्टी धंसेगी और ग्लेशियर पीछे की तरफ हटेगा, तो वहां की जो जमीन है वो कमजोर हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब जमीन कमजोर होगी तो उसके ऊपर जो कुछ भी स्थापित है वो कमजोर होगा, वो धंसेगा। तो यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जोशी मठ के साथ हो रहा है। और दूसरे कारण तो है ही है जो पर्यावरण को लेकर के होते हैं। आप जानते हैं कि वहां सुरंग बनाई जा रही है, वहां जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं किया जाना चाहिए। आप देखिए कि बाकायदे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, इसके बावजूद ये इन सब चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो हिमालय में इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आपको मालूम है कि 2013 में तो बहुत ही खतरनाक किस्म की बाढ़ आई थी। पिछले साल ही चमोली का जो कांड हुआ था, चमोली में बाढ़ आई थी, हाइड्रल प्रोजेक्ट बह गए थे हमारे, वो भी आपके ध्यान में होगा। तो कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और मेंस में, हिमालय में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको लेकर के एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस साल के लिए मेंस में जो हिमालय के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो जोशी मठ की घटना को लेकर बन सकता है। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस पर एडिटोरियल कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर लिखा भी है, जो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। हमारे एक स्टूडेंट हैं अमृत नारायण सतपति, ओडिशा से। अमृत नारायण, ये मेल पढ़कर के बहुत खुशी हुई कि ओडिशा सिविल सर्विस का तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। बहुत बहुत तुमको इसके लिए एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाइयां, और साथ ही साथ बहुत अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तुम यूपीएससी में लगे हुए हो और बिल्कुल लगे रहो, लेकिन अब ये जो तुम्हें मिला है इसके प्रति भी तुम्हारा दायित्व है, इसमें भी मन लगाओ। और ऐसा बड़े आराम से किया जा सकता है, ये मत समझना कि इसमें तुम आ गए हो तो यूपीएससी में वो कहीं बाधा बनेगी। नहीं, तुम्हारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक नई एनर्जी पैदा होनी चाहिए, खासकर इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्त हैं, शैलेश श्रीवास्तव भांडेर मध्य प्रदेश से, देवी दत्त नांदी रावल अहमदाबाद से, रोहितास गुर्जर जयपुर से, और निशा शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।